तो आज से हम इस वर्ष की के गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में किए जाने वाले गौर लीला की कथाएं प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में भी गौर लीला इसी तरह से गौर पूर्णिमा के समय हम करते आए हैं। गौर लीला सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गौर लीला भगवान के उस रूप के लीला का वर्णन है जो कि इस कलयुग के विशेष अवतार हैं, युगावतार चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु वही श्री कृष्ण है, लेकिन एक बड़े अद्भुत और कृपालु रूप में प्रकट हुए हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्तिरस्माद एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदौ गतौ तौ चैतन्याख्यम अधुना प्रकटम तद्वयम् चैक्यमाप्तम् राधा भाव द्युति सुवलितम् नौमि कृष्ण स्वरूपम्। वो कहते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्तिरस्माद, जो राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम का संबंध होता है वो इस संसार के पुरुष स्त्री का जो संबंध है वैसे नहीं होता। ये प्रणय या प्रेम जो है, राधा कृष्ण लीला जो है, ये लादिनी शक्तिर अस्माद, भगवान के अंतरंगा दिव्य आनंद देने वाली शक्ति का एक रूप है। इसका मतलब है कि राधा कृष्ण की लीला ये दिव्य लीला है, इससे संसार से कुछ लेना देना नहीं होता है। और यही राधा और कृष्ण जब एक हो जाते हैं तो चैतन्य कहलाते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्तिरस्माद एकात्मानाव अपि भुवि देह भेदम गतौ तौ। वैसे राधा कृष्ण एक हैं, लेकिन ये लीला का स्वाद लेने के लिए दोनों अलग हो गए हैं, राधा और कृष्ण हो गए हैं। वैसे है कृष्ण एक ही, लेकिन इस दिव्य लादिनी शक्ति से उत्पन्न होने वाले प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, इसका आस्वादन करने के लिए कृष्ण दो हो गए हैं, राधा और कृष्ण। और फिर यही दो राधा कृष्ण फिर से एक हो गए हैं। चैतन्याख्यम अधुना प्रकटम तद्वयम् चैक्यम आप्तम, और ये दोनों एक होकर अभी अभी अधुना प्रकटम अभी अभी प्रकट हुए हैं। केवल 500 साल पूर्व चैतन्य महाप्रभु यहां पर प्रकट हुए। और ये जो चैतन्य महाप्रभु का रूप है ये क्या है? राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम है। वो कृष्ण स्वरूप साक्षात श्री कृष्ण है, लेकिन किस रूप में आए हैं? श्रीमती राधा रानी के भाव को और उनके कांति को, शरीर की कांति को स्वीकार करके वो भक्ति का आस्वादन लेने के लिए यहां पर आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के भाव लेकर आए हैं और गौड़ वर्ण, पिघले हुए सोने का वर्ण लेकर आए हैं, क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर की कांति है। और चैतन्य महाप्रभु आकर यहां कृष्ण प्रेम का आंदोलन या बांटने का आंदोलन, उसका उद्घाटन करके चले गए। कृष्ण प्रेम देने के लिए उन्होंने कोई पात्रता अपात्रता नहीं देखी, इसलिए बताया गया है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः, कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य वही भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन एक अद्भुत अति कृपालु रूप में। नमो महावदान्याय, क्योंकि उन्होंने ऐसी कृपा बरसाई है जो कि आज तक भगवान के किसी भी रूप ने या अवतार ने नहीं बरसाई थी। और चैतन्य महाप्रभु भगवान के कोई अवतार नहीं है, वो साक्षात भगवान है, अवतारी हैं। जिस प्रकार से नरसिंह देव, प्रभु रामचंद्र, वामन देव, मत्स्य अवतार इत्यादि, ये सब अवतार कहलाते हैं, और श्याम सुंदर गोविंद श्री कृष्ण वो अवतारी कहलाते हैं, क्योंकि वो इन सारे अवतारों के उगम स्थान हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वो भी अवतारी हैं, अवतार नहीं है। ये सारे जो अवतार हैं वो भगवान श्री कृष्ण के विस्तारित रूप हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वही श्री कृष्ण है, उनके विस्तारित रूप नहीं है, वही श्री कृष्ण। और अंतर इतना ही है कि भाव और कांति उन्होंने बदल दी है, बस। अगर श्री कृष्ण के श्याम वर्ण को आपने हटा दिया और उससे गौर वर्ण डाल दिया, और श्री कृष्ण के बांसुरी बजाने की लीला जो है उसको निकालकर केवल एक राधा रानी के भाव को उसमें डाल दिया, तो वो चैतन्य महाप्रभु हो गए। तो हम समझ सकते हैं कि खास करके कलयुग में जब कृष्ण प्रेम नाम की कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है कहीं, तो हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु के उपदेश को सुनना, गौर तत्व को जानना और गौर लीला को सुनना, ये कितना आवश्यक हमारे लिए है। खास करके कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के माध्यम के बिना हम श्री कृष्ण को नहीं समझ सकेंगे। तो कृष्ण प्रेम को कैसे हम प्राप्त कर सकेंगे? तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु एकमात्र मार्ग हैं। और खास करके जो वृंदावन का रस है, और खास करके वृंदावन के रस में जो गोपियों का प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, श्रृंगार रस या मधुर रस, अगर खास करके उसे प्राप्त करना है तो चैतन्य महाप्रभु के बिना ये संभव नहीं है। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनते हैं, हमें ये नहीं समझना चाहिए ये कोई साधारण लीला है। ऐसी लीलाओं को सुनकर हमारा हृदय शुद्ध होता है और कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो सकता है, अगर हमने बड़े ध्यान से श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक इन लीलाओं का श्रवण किया तो। वैसे चैतन्य महाप्रभु के उपदेश और लीलाओं के लिए दो प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है चैतन्य चरितामृत, जिसकी रचना महाभागवत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने की है, और दूसरा ग्रंथ है चैतन्य भागवत, वृंदावन दास ठाकुर द्वारा विरचित। अब चैतन्य चरितामृत खास करके चैतन्य महाप्रभु के मध्य लीला और अंत लीला में ज्यादा जोर देता है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु यहां 48 साल प्रकट लीला की उन्होंने इस भौतिक जगत में, और पहले 24 साल जो उनके हैं उनको आदि लीला कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। फिर उन्होंने सन्यास लिया, सन्यास लेने के 6 साल बाद वो भ्रमण करने लगे, दक्षिण भारत की यात्रा में गए, उत्तर भारत में भी गए, और फिर जगन्नाथपुरी में भी कई साल रहे। तो 30 साल की उम्र तक जब वो भ्रमण करते रहे, इसको मध्य लीला कहते हैं। और फिर अंत के जो 18 साल हुए, इसको अंत लीला कहते हैं। इन 18 सालों में चैतन्य महाप्रभु केवल जगन्नाथपुरी में रहे, कहीं बाहर नहीं गए। और इन 18 सालों के पहले 6 सालों में उन्होंने जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में शामिल होकर बहुत उत्साह से प्रेम से संकीर्तन किया भक्तों के संग में। और अंत के जो 12 साल हैं, इनमें वो ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर ही अंदर जाने लगे और केवल अपने निकट के भक्तों के संग में, जैसे कि रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो कृष्ण भक्ति के गूढ़ रसों का स्वाद लेने में ज्यादा से ज्यादा समय बिताया करते थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की 48 साल के प्रकट लीला समाप्त हुए। फिर चैतन्य महाप्रभु स्वधाम लौट के चले गए स्वेच्छा से। तो चैतन्य महाप्रभु की जो आदि लीला है 24 साल, इसके भी 4 भाग हैं। वैसे देखा जाए तो ये आदि लीला का ज्यादा जो वर्णन है ये चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। वैसे वृंदावन दास ठाकुर वो वेद व्यास के अवतार कहलाते हैं। जिस तरह वेद व्यास जी ने सुंदर तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में, उसी तरह से उन्हीं के अवतार वृंदावन दास ठाकुर ने भगवान कृष्ण के इस अद्भुत रूप चैतन्य महाप्रभु के अवतारों का वर्णन चैतन्य भागवत में किया है। वैसे इस ग्रंथ का नाम पहले चैतन्य मंगल था, लेकिन और एक महाभागवत थे जो बाद में आए जिनका नाम था लोचन दास। तो लोचन दास ने भी एक और ग्रंथ लिखा जिसका नाम था चैतन्य मंगल, तो दो चैतन्य मंगल हो गए। इसलिए फिर भक्तों ने इसका नाम बदल दिया और वृंदावन दास ठाकुर विरचित ग्रंथ चैतन्य मंगल के नाम को बदलकर उसे चैतन्य भागवत कहा। तो चैतन्य भागवत में आदि लीला का बड़े विस्तार से वर्णन पाया जाता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब आदि लीला का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कि केवल संक्षेप में मैं इन लीलाओं का वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने पहले ही बड़े विस्तार से इन लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। तो फिर मेरे क्या औकात कि वृंदावन दास ठाकुर के चबाए हुए चीजों को मैं पुनः चबाऊं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने जो लीलाओं का वर्णन किया है मैं केवल संक्षिप्त रूप में उसको प्रस्तुत करूंगा। और ऐसे कोई लीलाएं हैं जिनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं किया है, तो मैं उन लीलाओं को थोड़े से विस्तार में कहने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह से आदि लीला का वर्णन जो हम पिछले 2 साल से सुनते आए हैं ये ज्यादातर चैतन्य भागवत में लिखी हुई है। इसलिए ज्यादा अभी हम चैतन्य भागवत से ही चर्चा करेंगे, हालांकि बीच बीच में चैतन्य चरितामृत की व्याख्या भी हम सुनाने का प्रयास करेंगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदि लीला के 4 भाग हैं। पहला है बाल्य लीला, दूसरा पौगंड लीला, तीसरा कैशोर लीला और चौथा यौवन लीला। ये जो उम्र का विभाजन है ये सब जगह होता है, मनुष्य समाज में ये विभाजन उम्र का पाया जाता है। जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक ये बाल्यावस्था कहलाती है। 6 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक यह पौगंड अवस्था कहलाता है। 11 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक ये कैशोर अवस्था या नव यौवन अवस्था कहलाता है, और 16 साल से युवा अवस्था शुरू हो जाती है, यौवन अवस्था। तो चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीला का वर्णन भी बड़े सुंदर रूप से वृंदावन दास ठाकुर ने किया है, इसकी चर्चा भी हम पिछले साल तक हम कर रहे थे। बाल लीला में जन्म लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु जिनका नाम निमाय रखा गया था वो एक साधारण बालक की तरह लीला करते थे। जैसे साधारण बच्चा रोता है या अपने घुटनों पे चलता है, कभी कभी मिट्टी खाता है, ऐसे ही निमाय ने लीला करना आरंभ किया। और उसी दौरान निमाय ने उस ब्राह्मण के ऊपर असीम कृपा बरसाई जो कि एक अतिथि के रूप में जगन्नाथ मिश्र के घर में आया, और जब भी वो भोजन पका के कृष्ण भगवान की मूर्ति को अर्पण करते तो बालक निमाए उस भोग को जाकर ग्रहण करते, उसको खा लेते और वो ब्राह्मण बहुत विचलित हो जाते। अंत में निमाय ने अपना असली रूप उस ब्राह्मण को दिखा दिया और उसी दौरान बाली लीला में बालक निमाय ने दो चोरों को भ्रमित कर दिया, क्योंकि निमाय के दिव्य शरीर पे अलग अलग रत्न और गहने थे जिनको चुराना चाहते थे ये दो चोर, तो निमाय को उठाकर ले गए। लेकिन भगवान की माया शक्ति के प्रभाव में ये दो चोर समझ नहीं पाए कि वो कहां जा रहे हैं। उनको निमाय को कंधे पर बिठाकर घुमा फिराने लगे, इधर उधर बहुत दूर चले गए, सोचने लगे कि वो खुद के घर में जा रहे हैं। लेकिन माया शक्ति के प्रभाव में क्या हुआ कि खुद वो जगन्नाथ मिश्र के घर में अर्थात निमाय के घर में फिर से लौट के आ गए और चोरों को पता नहीं चला कि हम वापस उसी स्थान पर कैसे लौट के आ गए जहां से हमने इस बच्चे को उठा के ले गए थे। तो वहां पर बहुत घबरा गए क्योंकि जगन्नाथ मिश्र के घर में हाहाकार मच गया था कि निमाय कहां गया है। तो डरते डरते उन्होंने निमाय को वहां रख दिया और वहां से भाग गए और फिर इसी तरह से लीला करते गए बालक निमाय। पौगंड अवस्था की प्राप्ति हुई, हाथे खड़ी मतलब उनको हाथ में खड़ी दिया गया लिखने के लिए, चौक पाटी पे लिखने के लिए उनका शिक्षण आरंभ हो गया। बहुत जल्दी उन्होंने शिक्षण ली। बीच में जगन्नाथ मिश्र ने उनका शिक्षण बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरा बड़ा लड़का विश्वरूप ने संन्यास ले लिया, अगर मेरा छोटा बच्चा निमाय ये भी अगर बहुत शिक्षित हो जाएगा तो ये भी संन्यास ले लेगा तो फिर हमारा क्या होगा, इसलिए इसको ज्यादा पढ़ाना ही नहीं है, इसको अज्ञानी रखना है ताकि उसको पता नहीं चलेगा कि संसार दुख का सागर है, शास्त्रों में क्या बताया है। वो अज्ञान में रहेगा, हम उसको लाड़ प्यार दे सकेंगे, हमारे पास रहेगा, मूर्ख हो कोई बात नहीं लेकिन कम से कम हमारे पास तो रहेगा। तो ये जब हुआ तो निमाय ने बहुत शरारत करना आरंभ किया, हलचल मचा दिया सारे नवद्वीप में, जाके गंगा में भी वो जल क्रीड़ा करते थे, वहां के नव युवतियों को छेड़ते थे और ब्राह्मणों को छेड़ते थे, सबकी पूजा की सामग्री को बिल्कुल नष्ट कर देते थे, ऐसे बहुत सारे लीलाएं करते थे, बहुत सारे नवद्वीप के निवासियों को हैरान करते थे, उनके घर में जाके जब वो शौचालय में गए थे बाहर से ताला मारकर आ जाते थे, ऐसे बहुत सारी चीजें लीलाएं पौगंड लीला में उन्होंने किए। पौगंड लीला के अंत में फिर उनका विवाह हुआ लक्ष्मी प्रिया से। आगे चल के जब किशोर अवस्था की प्राप्ति हुई तो गंगादास पंडित के टोल में पाठशाला में वो पढ़ते रहते थे तो और भी ज्यादा निपुण हो गए और उन्होंने अपनी पाठशाला खोली और अपने विद्यार्थियों को सिखाने लगे, खुद भी पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे। ये तो ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये छह काम होते हैं ब्राह्मण के। तो निमाय इतने विद्वान थे कि अब उनका नाम पंडित हो गया तो लोग निमाय को निमाय पंडित के नाम से पुकारते थे और इस दौरान निमाय पंडित इतने विद्वान हो गए अपने किशोर लीला में कि जो भी ब्राह्मण नवद्वीप में थे, विप्र थे, विद्वान थे, उनको वाद में तर्क में आसानी से हरा देते थे। कोई भी साहस नहीं करता था कि निमाय पंडित के सामने आए, निमाय को देखते ही घबरा कर दूर चले जाते थे क्योंकि निमाय सभी को चेतावनी देते, चलो मेरे साथ तर्क करो, मैं चैलेंज करता हूं, चलो आओ। फिर ऐसे कोई व्याकरण का, न्याय का या प्रश्न ऐसे उठाते थे कि कोई कुछ जवाब नहीं दे पाता था और तर्क में वाद में इतने निपुण हो गए, इतने दक्ष हो गए कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। कभी कभी वो किसी एक ब्राह्मण को बुलाते और कहते कि व्याकरण के इस विषय के ऊपर व्याख्या करो और वो कुछ व्याख्या करते तो फिर निमाय पंडित उसका खंडन करते और ठीक उसका उल्टा जो निष्कर्ष है उसको पेश करते और फिर इसके जवाब में उस ब्राह्मण को कोई कहने के लिए शब्द नहीं रह जाते। तो फिर निमाय पंडित कहते कि क्या तुम अभी मैंने जो कहा है उसका खंडन कर सकते हो? तो ब्राह्मण बोलते नहीं, जो तुमने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल उसमें कोई दोष हम ढूंढ नहीं सकते हैं। तो फिर खुद ने स्थापित किए हुए सिद्धांत को निमाय पंडित उसका खंडन कर देते और सभी लोग आश्चर्यचकित रहे, चकाचौंध रह जाते कि हमने तो सोचा नहीं था कि इसमें कोई दोष है, लेकिन इसका खंडन खुद निमाय ने किया। और जो खंडन के खंडन किए हुए सिद्धांत हैं उनको बोलते भी इसका खंडन कर सकते हो, बोलते नहीं ये तो परिपूर्ण है। और निमाय पंडित फिर से उसका खंडन करते और पहले जो स्थापित किया हुआ जो सिद्धांत था उसको पुनः स्थापित कर देते। ऐसे लोग चकाचौंध रह जाते निमाय पंडित के विद्वत्ता को देखकर। आखिर वो तो स्वयं भगवान है, उनके लिए तो खेल है, ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई सुंदर लीला नहीं है। लेकिन क्योंकि मनुष्य समाज के लिए अद्भुत है तो हमें लगता है कि बहुत अद्भुत है। वैसे तो सब ज्ञान भगवान अंदर से ही देते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं और अंदर से ही मैं उनको स्मृति विस्मृति और ज्ञान देता हूं। तो बुद्धि और ज्ञान के स्रोत तो भगवान ही हैं, तो उनको कोई ब्राह्मण को पंडित को वाद में हराना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मनुष्य रूप में निमाय पंडित भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे इसलिए हमें लगता है कि कितने आश्चर्य की बात है। और इसी दौरान वो धन एकाग्र करने के लिए एक वो पूर्व बंगाल में चले गए किशोर अवस्था में। वहां से सब जगह उनका वाहवाकार हुआ, आदर सत्कार हुआ, लोग समझने लगे कि निमाय पंडित कितना विद्वान है। बहुत यश प्राप्त किया वहां पर और तपन मिश्र नाम के एक व्यक्ति वहां उनको मिले और ये आगे चल के उनके बहुत शुद्ध और पवित्र भक्त बनने वाले थे। पहली बार गुप्त रूप से चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र किसी व्यक्ति को सुनाया और वो थे तपन मिश्र, और उनको आदेश दिया कि आप अभी बनारस चले जाओ, काशी चले जाओ, वहां जाकर मैं तुम्हें बहुत साल बाद आकर मैं मिलूंगा। और तपन मिश्रा के लड़के थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो आगे चल के षड गोस्वामी में से एक थे। और फिर वो लौट के आए पूर्व बंगाल से। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि लक्ष्मी प्रिया देवी उनकी पत्नी उनका तिरुभाव हो गया, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु से निमाय पंडित से विरह सहन नहीं कर सके। और इस दौरान जब निमाय पंडित लौट के आए वापस तो उन्होंने देखा कि सची माता शोक कर रही है, और निमाय पंडित ने अपने पिता अपने माता के शोक को वो नहीं देख पाए। और माता ने जब कहा कि पुनः विवाह करो तो निमाय पंडित ने स्वीकार किया, और विष्णु प्रिया देवी जो कि लक्ष्मी की अवतार हैं उनसे विवाह दूसरी बार किया। इसके पहले पौगंड अवस्था में ही जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो चुका था, इसलिए सची माता अकेली थी तो निमाय पंडित अपने माता सची देवी का बहुत देखभाल किया करते थे। तो इस प्रकार से दूसरे विवाह के बाद केशोर अवस्था में नवद्वीप में एक बहुत बड़े पंडित आए जिनका नाम था, क्या नाम था, केशव कश्मीरी, और दिग्विजयी पंडित कहलाते थे। सब जगह जाकर वो जगह जगह के विद्वानों को पंडितों को हराते थे वाद में तर्क में। जैसे आजकल स्पर्धाएं होती है ना क्रिकेट फुटबॉल हॉकी इत्यादि, तो उस जमाने में स्पर्धाएं होती थी तो कैसे ब्राह्मणों के बीच वाद विवाद की स्पर्धा, तर्क की स्पर्धा, किसको ज्यादा जानकारी है शास्त्रों की, कौन अच्छी तरह से ज्यादा शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रस्तुत कर सकता है, कौन ज्यादा विद्वान है, ऐसे प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। तो इनमें से केशव कश्मीरी इतना विद्वान था, अद्भुत उसकी बुद्धि थी कि ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं था जिसको उसने हराया नहीं था, और हराकर ऐसे उनके घमंड को चूर करता था कि वो ब्राह्मण बेचारा सामने कभी आता नहीं था। और वो केशव कश्मीरी एक विजय पत्र लेकर घूमता था और उस पत्र के ऊपर जो भी ब्राह्मणों को हराते थे वो वहां उनको दस्तखत करना पड़ता था कि मैं केशव कश्मीरी से मैं हार गया। तो ऐसे देश भर के ब्राह्मणों के नाम और उनके दस्तखत उनके पास थे। तो उन्होंने सुना था कि नवद्वीप में निमाय पंडित नाम का बहुत बड़ा विद्वान है और वो सब पंडितों को उसने हरा दिया है। और जब तक मैं निमाय पंडित को नहीं हराऊंगा तब तक वास्तव में मैं दिग्विजय पंडित नहीं हूंगा। हालांकि लोग कहते हैं मुझे दिग्विजय पंडित, लेकिन निमाय पंडित को हराने के बाद में ही वास्तव में मैं यशस्वी हो जाऊंगा। तो केशव काश्मीरी आए और उस समय निमाय पंडित अपने शिष्यों के साथ में बैठे थे गंगा जी के तट पर, और जब केशव काश्मीरी को देखा तो बड़े नम्रता से उनका स्वागत किया। केशव काश्मीरी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े पंडित हो। तो निमाय पंडित ने कहा कि मैं तो बहुत छोटा आदमी, मैं तो बच्चा हूं। उस समय वास्तव में चैतन्य निमाय पंडित की आयु केवल 15 साल की थी, 14-15 साल, और कहां दिग्विजय केशव काश्मीरी, वो तो बड़े परिपक्व अवस्था में थे। तो निमाय पंडित ने कहा कि मैं तो एक छोटा बालक हूं, मैं भला क्या जानू, मैं तो व्याकरण का आदमी हूं और आप तो न्याय शास्त्र वगैरह मुझे तो नहीं मालूम। तो आप इतने विद्वान हैं, कृपया गंगा जी की स्तुति कीजिए, कोई स्तोत्र सुनाइए गंगा जी के महिमा के बारे में। तो उसी क्षण दिग्विजय केशव काश्मीरी ने 100 श्लोकों की रचना की। ये पहले की हुई रचना नहीं थी, उसी क्षण जब निमाय पंडित ने कहा कि रचना कीजिए, अपने कल्पना से अपने मन से उन्होंने 100 श्लोकों की रचना की। और रचना करते मन में जैसे जैसे रचना करते वैसे वैसे बोलते रहते थे और लगातार 1 घंटा बोलते गए। उस 1 घंटे में लगातार जैसे जैसे श्लोक उनके मन में आते उसकी रचना करते, वो गंगा की तरह उनके मुख से निकलते रहते। सभी लोग जो भी देख रहे थे चैतन्य निमाय पंडित के शिष्य, मुंह खोलकर देखते रह गए, आंख बड़े बड़े करके। आज तक उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा नहीं था जो ऐसे एक क्षण में इतने सारे श्लोक, 100 श्लोक, वो भी गंगा जी के ऊपर बोलते गए। और ऐसे कविता, ऐसे श्लोक कि बड़े बड़े पंडित भी समझ नहीं पाए उसको। और केशव काश्मीरी बोलते गए और फिर निमाय पंडित ने सुना, कहा कि आप तो बड़े विद्वान हैं। और उन्होंने कहा कि आपकी कविता इतनी सुंदर है, कोई ऐसे शायद कवि नहीं होगा यहां सारे ब्रह्मांड में आपके सामने आने वाला, लेकिन मैं आपका एक श्लोक समझा नहीं। कौन सा है? आपका 65वां श्लोक। और फिर निमाय पंडित ने वो 65वां श्लोक बताया। तो केशव काश्मीरी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि अरे मैंने तो पवन की तरह मेरे सारे 100 श्लोक बताए, तुम्हें ये श्लोक याद कैसे हुए? खैर जो भी हो, तो निमाय पंडित ने कहा कि आपके इस श्लोक में 5 सद्गुण हैं और 5 दुर्गुण हैं। अरे सद्गुण तो मैं समझता हूं, लेकिन मेरे श्लोक में दुर्गुण तो हो ही नहीं सकता। अच्छा बताओ तो सही क्या है? तो निमाय पंडित ने पहले 5 सद्गुण बताए, किस प्रकार के अलग अलग तरह से अलंकार इत्यादि, और फिर अंत में जो दोष थे उसमें वो दोष बताए। एक के बाद एक जैसे जैसे निमाय पंडित दोष बताते गए, केशव काश्मीरी स्तब्ध रह गए, कुछ एक शब्द भी बोल नहीं पाए। उनकी बुद्धि चकरा गई, बुद्धि में कोई भी उत्तर नहीं आया, केवल देखते रह गए और अपना सिर झुकाकर बिल्कुल विचलित अवस्था में वापस लौटकर चले गए। रात को नींद नहीं आई और सरस्वती देवी से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि सरस्वती देवी का खास उनके ऊपर आशीर्वाद था, इसलिए उनको ये वाक सिद्धि मिल गई थी कि ऐसे एक के बाद एक वो ऐसे सुंदर श्लोकों की रचना कर सकते थे। और रात को सरस्वती देवी उनके सपने में आई और बोलने लगी कि अरे तुम नहीं जानते कि जिनसे तुम हार गए हो वो मेरे आराध्य देव हैं, मेरे स्वामी हैं, इसलिए शोक नहीं करना, इतना घमंड नहीं करना, जाओ अभी निमाय पंडित के सामने उनका शरण ले लो और उनके भक्त बन जाओ। तो अगले दिन सुबह को केशव काश्मीरी निमाय पंडित के सामने आए और उनका शरण ग्रहण किया एक एकांत स्थान में। तो इसके साथ में चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित जैसे उनका नाम था उस समय, उनकी कैशोर लीला समाप्त हो गई। और इस समय वो करीब 15 साल के थे। अब उनकी यौवन लीला आरंभ हो गई, तो आज से हम उनकी यौवन लीला का वर्णन करेंगे। ऐसे ही निमाय पंडित अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन सब जगह करते रहे और फिर उनके मन में इच्छा हुई कि अभी हमें हमारे असली स्वरूप का प्राकट्य करना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि वास्तव में मैं किस उद्देश्य से यहां पर आया हूं। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उस समय नवद्वीप में क्या दशा थी, बहुत बुरी दशा। वहां पर लोग इतने बड़े नास्तिक हो गए थे, भगवान श्री कृष्ण में कोई रुचि नहीं थी, बिल्कुल कृष्ण भगवान से विमुख हो चुके थे और विमुख होकर वो बड़े पाप करते थे, जघन्य कार्य करते थे, घमंडी थे, एक दूसरे से द्वेष करते थे, इसलिए भक्ति मार्ग में उनको कोई विश्वास नहीं था। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं कि हालत इतनी बुरी थी नवद्वीप में उस समय कि लोग भक्ति नहीं करते थे, ये तो एक बात है, लेकिन भक्ति शब्द का उच्चारण भी नवद्वीप में कभी गलती से भी नहीं होता था। केवल गिने चुने थोड़े बहुत भक्त थे, इन भक्तों के समाज में केवल कृष्ण भक्ति चलती थी, लोग कृष्ण कीर्तन करते थे, लेकिन इसके अलावा हर एक दूसरा जो आदमी है केवल अपने अपने मनगढ़ंत ढंग से वो जीता था। पहले तो कर्मकांडी लोग थे, कोई ज्ञानी थे, कोई योगी थे, और बाकी तो केवल साफ इंद्र तृप्ति करने वाले और पाप करने वाले। ऐसे अवस्था में भक्तों की ये लोग बहुत निंदा करते थे, भक्तों को टोकते थे, छेड़ते थे, उनको डांटते थे, उनको गालियां देते थे, तो भक्त बड़े परेशान थे, बहुत दुखी थे इस दशा को देखकर। और भक्तों के गुण ये होते हैं कि वो समाज के प्रति, जन साधारण के प्रति बड़े करुणा की दृष्टि रखते हैं। वो सोच रहे थे कि ये लोग इतने पापी हैं, इतने पतित हैं, इनका क्या होगा आगे चलकर, तो वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि इनका उद्धार कीजिए। तो उनकी दशा देखकर दुखी रहते थे, क्योंकि वैष्णव जो होते हैं पर दुख दुखी होते हैं, दूसरों के दुख को देखकर वो दुखी हो जाते हैं। और दूसरा कारण वैष्णवों का दुखी होने का ये था कि ये लोग अपने पाप को ज्यादा बढ़ा रहे थे वैष्णव की निंदा करके। वैष्णव निंदा ये सबसे बड़ा पाप होता है। जगाई मधाई की कहानी से हम जानते हैं कि जगाई मधाई इतने बड़े पापी थे, शराब पीते थे, बलात्कार करते थे, डकैती करते थे, मांसाहार करते थे, गाय को मारकर भी खाते थे, हर प्रकार के पाप करते थे, लेकिन केवल एक पाप था जो उन्होंने नहीं किया और वो है वैष्णव अपराध। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा उनको मिल गई। लेकिन ये लोग जो थे नवद्वीप के उस समय, वैष्णव अपराध भी बहुत करते थे, वैष्णवों की बहुत निंदा करते थे, उनको टोकते थे, गालियां देते थे, तो ये दूसरा कारण था कि वैष्णव बड़े दुखी थे और सोचते थे कि पाप इनका कितना बढ़ जाएगा। और उस समय जो छोटा सा वैष्णव समाज वहां था नवद्वीप में, उनके दुखी होने का तीसरा कारण ये था कि निमाय पंडित ये केवल शुष्क व्याकरण और न्याय में वो फंसे पड़ा है। निमाय पंडित ने अभी तक अपने असली स्वरूप को प्रकट नहीं किया था, भक्ति करना आरंभ नहीं किया था, केवल जगह जगह जाकर वैष्णवों को चेतावनी देते, चलो मेरे साथ आओ। पिछले साल की कथा से आपको याद होगा कि जब निमाय पंडित मुकुंद को देखते या किसी और भक्त को देखते तो तुरंत उसके पीछे जाते, उसको पकड़ते, वाद में आओ मेरे साथ, वाद करो, वाद विवाद करो। तो वैष्णव तो वाद विवाद में कोई रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो समय को बर्बाद करना है। समय तो बहुत मूल्यवान होता है, खास करके मनुष्य जन्म में, इसलिए हर एक क्षण हमें भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। केवल व्यर्थ में वाद विवाद में समय गंवाना, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आखिर में क्या हुआ कि सभी वैष्णव जो भी थोड़े बहुत थे नवद्वीप में उस समय, जब भी दूर से निमाय को देखते तो दूसरे रास्ता पकड़कर चले जाते। तो निमाय पंडित ही देखते और जब एक बार मुकुंद ने ऐसे किया तो मुकुंद के पीछे गए, अरे मुकुंद कहां भाग रहे हो, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो, चलो मेरे साथ तर्क करो। फिर मुकुंद भाग के चले जाते। फिर उस समय निमाय पंडित अपने शिष्यों को बोलते, क्योंकि हमेशा अपने शिष्यों के साथ घूमते फिरते थे, और बोलते कि देखो मैं जानता हूं कि ये वैष्णव मेरा संग क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं वैष्णव नहीं हूं, मैं केवल तर्क वितर्क करता हूं, वाद करता हूं, वैष्णव को बिल्कुल ये वाद विवाद पसंद नहीं है, लेकिन देखो आगे चल के मैं ऐसे एक वैष्णव बनूंगा कि ये सब मेरा संग करने के लिए आएंगे। ये भगवान की लीला है, भगवान स्वराट है, जब चाहे वैसे वो कोई भी लीला प्रकट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो निमाय पंडित या भगवान ने सोचा था कि मैं अमुक समय तक मेरी लीला ऐसे करूंगा जिसमें कि मैं प्रकट नहीं करूंगा कि मैं वास्तव में कौन हूं और किस उद्देश्य से आया हूं। तो खैर इस बार अभी तक 15-16 साल की उम्र होने तक भी निमाय पंडित ने भक्त होने की लीला प्रकट नहीं की थी, लेकिन फिर भी निमाय पंडित स्वयं भगवान है, इसलिए सारे जो वैष्णव थे निमाय से बहुत प्रेम करते थे। न जाने क्यों, क्या गुण थे निमाय के अंदर जिससे लोग निमाय से दूर भी रहते थे और निमाय से प्रेम भी करते थे, और वो शोक करते थे कि अगर निमाय जैसा व्यक्ति अगर वैष्णव बन जाए तो फिर सारे जगत का उद्धार हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है, आज इतनी बुरी हालत है सब जगह। तो भगवान कृष्ण से हमेशा प्रार्थना करते कि आप निमाय पंडित को वैष्णव बनाइए। तो अभी तक वैष्णव नहीं बने थे निमाय पंडित, तो ये वैष्णवों के दुख का तीसरा कारण था। तो निमाय पंडित सब जगह नवद्वीप में ये वातावरण देख रहे थे चुपचाप कि क्या चल रहा है, कितने पापी लोग बन रहे हैं, और कैसे ये वैष्णवों को गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, और अपने मन ही मन में उन्होंने ठान लिया कि चलो अभी समय आ रहा है, मुझे अपने असली आंदोलन को आरंभ करना चाहिए। लेकिन उसके पहले उन्होंने सोचा मुझे गया जाना चाहिए, मेरे पिताजी के लिए श्राद्ध करना चाहिए और फिर आना चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, क्या उनके पिता का उद्धार केवल इस वजह से नहीं हो सकता कि वो भगवान के पिता हुए? आखिर भगवान का पिता कौन हो सकता है, कोई विशेष भक्ति हो सकते हैं? सची माता और जगन्नाथ मिश्र कौन है? वही भगवान के माता पिता यशोदा मई और नंद महाराज, जो कि आज इस नवद्वीप लीला में आए हैं भगवान का संग करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु ने ठान लिया कि मुझे श्राद्ध के लिए जाना है, वो भी अपने स्वराज शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो भी श्राद्ध करने जा रहे हैं अपने पिता के, मानो कि वो एक साधारण गृहस्थ है। तो बड़े विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में जो गया में लीला उन्होंने की उसका वर्णन वो करते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने माता सची देवी से अनुमति ले ली और फिर वो गया की ओर चल पड़े। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित ने गया जाने का निर्णय क्यों लिया, इसका तात्पर्य क्या है। वैसे भी कोई साधारण वैष्णव होता है, अगर उसने भगवान श्री कृष्ण का शरण लिया होता है और वो कृष्ण की अनन्य भक्ति करता है तो उसे श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि कोई साधारण मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो ऋण से बंधा हुआ होता है। देवी देवताओं के प्रति ऋण होते हैं, ऋषि मुनियों के प्रति ऋण होते हैं, और पशुओं के प्राणियों के प्रति ऋण होते हैं, सगे संबंधियों के प्रति ऋण होते हैं, मनुष्य समाज के प्रति ऋण होता है, अपने पितरों के प्रति ऋण होता है, और इन सारे ऋणों को एक साधारण मनुष्य को चुकाना चाहिए कर्मकांड की पद्धति से। कर्मकांड की पद्धति के अनुसार ऐसे कार्य बतलाए गए हैं शास्त्रों में जिनको करने से हम ऋण से मुक्त हो जा सकते हैं। उदाहरणार्थ अगर हमें देवी देवताओं के प्रति जो ऋण है उसको चुकाना है तो हमें यज्ञ होम करने चाहिए उनकी प्रसन्नता के लिए। ऋषि मुनियों के प्रति जो हमारे ऋण हैं उनको चुकाना है तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और अगर हमें पितरों के प्रति, माता पिता के प्रति ऋण चुकाना है तो हमें संतान की उत्पत्ति करनी है गृहस्थ आश्रम जाकर। तो इस प्रकार से अलग अलग ऋणों को चुकाने के लिए ये अलग अलग पद्धतियां कर्मकांड के धर्मशास्त्रों में बताई हुई है। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया हुआ है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद इन ऋणों से मुक्त हो जाता है। उसे इन ऋणों की पूर्ति के लिए, इन ऋणों को चुकाने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। केवल कृष्ण भक्ति करने मात्र से ही वो सारे अन्य ऋणों से मुक्त हो जाता है। जिस तरह से जब कोई व्यक्ति एक वृक्ष के मूल पर पानी डालता है तो अलग से शाखाओं के ऊपर, फूलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर व्यक्ति मूल के ऊपर पानी नहीं डाले तो सब जगह उसे डालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो काम पूरा नहीं होगा। लेकिन मूल पे डालने से खुद ब खुद पानी सभी जगह पहुंच जाएगा। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाता है तो केवल कृष्ण भक्ति करने मात्र से अन्य सारे जो ऋण हैं वो खुद ब खुद मिट जाते हैं, चुक जाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो एक कृष्ण भक्त को, एक अनन्य कृष्ण भक्त को ऐसे कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण वो भले क्यों ऐसे श्राद्ध करने जाएं अपने पिता के लिए, क्या उद्देश्य था और वो गया क्यों गए, इसके लिए बहुत सुंदर ढंग से भक्ति सिद्धांत सरस्वती बता रहे हैं। वैसे गया एक धाम है, गया धाम। गया धाम के बारे में बड़े विस्तार में वर्णन आता है गरुड़ पुराण में, वायु पुराण में, अग्नि पुराण में, इन तीन पुराणों में खास करके। वैसे कई साल पहले गया धाम में, जो उस समय धाम नहीं था, प्रकट नहीं हुआ था धाम, बौद्ध लोग वहां बहुत रहा करते थे और बौद्ध लोग कर्मकांड की बहुत निंदा करते थे क्योंकि वो वेदों में विश्वास नहीं करते थे। अब हुआ ये कि द्वापर युग के अंत में और कलयुग की शुरुआत में जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनका पतन होने लगा और ये ब्राह्मण तथाकथित ब्राह्मण हो गए, प्रामाणिक ब्राह्मण नहीं। और इन वेदों के जो आदेश हैं, खास करके कर्मकांड के आदेशों को, वो केवल अपने इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करने लगे, दूसरों के ऊपर हक जमाने के लिए करने लगे। और खास करके जो पशु हत्या के विधि विधान है उनको खास करके लेकर केवल अपने जिह्वा के संतुष्टि के लिए, क्योंकि उनको मांसाहार करना था इसलिए वो पशु की हत्या करने लगे। और साथ साथ कर्म कांड को ही वो सच्चा आध्यात्मिक जीवन बताने लगे, ऐसे प्रचार करने लगे, जो कि गलत बात है। कर्म कांड ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है, यह भी भौतिक स्तर पर ही होता है। लेकिन ब्राह्मण जब इस प्रकार से पशु हत्या करने लगे बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई नियम के, तो भगवान ने देखा कि ये तो वेदों का दुरुपयोग हो रहा है और मेरे प्रति भी एक अपमान है। तो भगवान ने एक विशेष शक्त्यावेश अवतार का रूप धारण किया और वो किसका रूप है, वो है बुद्ध देव का रूप। तो बुद्ध के रूप में आकर भगवान ने क्या किया, उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत स्थापित किया और उनका मुख्य प्रचार यही था कि हमें पशुओं के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो जब ब्राह्मणों ने कहा कि लेकिन वेदों में कर्म कांड के भाग में बताया हुआ है कि देखो आप ऐसे ऐसे पशु की हत्या कर सकते हैं, यज्ञों में किए जाते थे, तो फिर बुद्ध देव ने कहा मैं इन वेदों में विश्वास नहीं करता, ये वेदों का कोई मतलब नहीं है। और इस प्रकार से बुद्ध देव ने वेदों का तिरस्कार किया, वेदों को स्वीकार नहीं किया और बौद्ध धर्म का स्थापन किया। तो उस समय बुद्ध देव का उद्देश्य था कि केवल पशु हत्या को बंद करना, लेकिन बुद्ध देव के जो अनुयायी आए आगे चल के धीरे 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 वो भूल गए कि भगवान ने बुद्ध देव का अवतार क्यों लिया था। तो उन्होंने बुद्ध देव और विष्णु को अलग भिन्न कर दिया, भूल गए कि बुद्ध देव कौन है। विष्णु सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, अब ये लोग भक्ति में आने के बजाय नास्तिक बन रहे हैं और गया में उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो मुझे वहां पर प्रकट होना चाहिए। और खास करके बौद्ध लोग, उनके संग में ऐसे कोई मायावादी लोग भी रहा करते थे। मायावादी लोग कौन हैं? जो ये सोचते हैं कि भगवान निराकार है और जब वो इस संसार में अवतार लेते हैं तो एक भौतिक रूप धारण करके अवतार लेते हैं, माया का शरीर ग्रहण करते हैं, इसलिए उनके सिद्धांत को मायावाद कहा गया है। तो मायावाद ये भी बौद्ध धर्म का एक छुपा हुआ रूप है, ढका हुआ रूप है। बौद्ध धर्म में क्या मानते हैं लोग? उनका वाद है शून्यवाद। वो कहते हैं कि ये सब कुछ मिथ्या है, सब शून्य है, ये सब मिथ्या है ही नहीं, आप है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, ये भी कुछ नहीं है, ये दुनिया ही नहीं है, ये सब माया है और माया के अलावा कुछ नहीं है। जब आपका माया छूट जाएगा, माया से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर ये सत्य है। इस माया के परे कोई सत्य है ही नहीं, सब जगत ही शून्य है। यह है बौद्ध धर्म, नास्तिकवाद। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये दोनों ये नास्तिकवाद के धर्म है। भगवान को नहीं मानते हैं कि भगवान भी कोई व्यक्ति है। लेकिन मायावाद कौन है? वो कहते हैं ये जगत मिथ्या है, लेकिन इस जगत के परे एक सत्य है जो ब्रह्म है, निराकार है। लेकिन निराकार है, लेकिन ये नहीं मानते कि भगवान भी कोई व्यक्ति है। कम से कम बौद्ध लोगों से एक कदम ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि वो ये तो कम से कम मानते हैं कि इस जगत के परे भी कोई आध्यात्मिक सत्य है। लेकिन ये आध्यात्मिक सत्य क्या है वो पूरी तरह से नहीं जानते हैं, केवल निराकार रूप को जानते हैं। तो इस प्रकार से ये मायावादी लोग जो हैं, ये भी धीरे धीरे से नास्तिकवाद में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के साकार रूप को स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से बौद्ध और मायावाद में एक संबंध है, क्योंकि मायावाद ढका हुआ बौद्ध धर्म है। जैसे कि पुराणों में बताया, शिवजी स्वयं कहते हैं, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते तस्मात् परतरम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। शिवजी पार्वती देवी को कहते हैं कि हे देवी, कलयुग में मैं एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो जाऊंगा और वहां आकर मैं एक असत शास्त्र, एक झूठा शास्त्र प्रस्तुत करूंगा और इसका नाम होगा मायावाद। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, और ये क्या होगा? प्रच्छन्नम बौद्धम, ढका हुआ बौद्ध धर्म होगा ये, क्योंकि ये भी नास्तिकवाद होगा लेकिन ढका हुआ रूप होगा इसका। तो मैं इसका प्रचार आके करूंगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि मायावादी और बौद्ध लोग ज्यादा थे उस समय, तो भगवान विष्णु ने सोचा, जिनका नाम है गदाधर, जिनके हाथों में गदा है, गदाधर विष्णु ने अपने चरण कमलों को गयासुर के सर पर रख दिया, अर्थात गया में अपने पदचिन्ह उन्होंने स्थापित कर दिए। इसलिए गदाधर विष्णु के पदचिन्ह आज भी गया में हैं, और इसलिए वहां पर लोग श्राद्ध करने जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के चरण कमल वहां पर स्थापित हैं। तो वैसे ये चरण चिन्ह भगवान विष्णु के हैं, लेकिन किस रूप में? वामन देव के रूप में। तो गया धाम वामन देव का धाम है, और जो पदचिन्ह वहां है वो वामन देव के हैं, जो कि विष्णु के रूप हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि भगवान विष्णु ने केवल इन मायावादियों का और बौद्ध लोगों का उद्धार करने के लिए और इनके झूठे सिद्धांतों को कुचला देने के लिए वहां अपने पदचिन्हों की स्थापना की है गया में, क्योंकि जो मायावादी लोग होते हैं वो भगवान के चरण कमलों को स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान के रूप को ही स्वीकार नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान का रूप ही नहीं है, भगवान निराकार हैं, और अगर उनका रूप है जो कि संसार में प्रकट होता है तो वो झूठा रूप है, माया का रूप है, भौतिक पदार्थों का बना हुआ उनका शरीर है। इसलिए ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत में प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, यन्य अरविंद दाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ते दो अनादृत युष्मद् अंग्रयः। वो कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो कि अपने आप को मुक्त मानते हैं, सोचते हैं कि उन्होंने परम पद की प्राप्ति कर ली है, लेकिन उनकी बुद्धि अभी तक शुद्ध नहीं हुई है, अविशुद्ध बुद्धयः, और सोचते हैं लेकिन कि मैंने परम पद की प्राप्ति की है। बहुत तपस्या करते हैं वो, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा, सोचते हैं कि इतना तपस्या करके मैं परम पद की प्राप्ति कर चुका हूं, लेकिन ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, पतन्ति अधो, लेकिन उनका पतन हो जाता है। निराकार ब्रह्म में भी जाते हैं फिर भी वहां से उनका पतन हो जाता है। क्यों? अनादृत युष्मत अंग्रयः, क्योंकि इन मायावादियों ने, निराकारवादियों ने आपके चरण कमलों के प्रति अंग्रया, अंग्रही मतलब चरण कमल, अनादर किया है, मतलब आपके चरण कमलों का, आपके दिव्य रूप का, सच्चिदानंद रूप का अनादर किया है, उसको ठुकराया है, इसलिए उनका पतन हो जाता है। क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान के जो रूप में निराकार में कोई गुण नहीं है, कोई विविधता नहीं है, लेकिन भगवान के दिव्य रूप में विविधता है, उनके लीलाओं में विविधता है, इसलिए उनके चरण कमल में भी अनंत विविधता है। तो भगवान विष्णु ने इसलिए अपने चरण कमल वहां गया में स्थापित किए, ये बतलाने के लिए कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैं केवल निराकार नहीं हूं, और मेरे चरण कमल ये सिद्ध करते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूं, और मेरे चरण कमलों में भी अनंत विविधता है, दिव्य विविधता है। तो इस प्रकार से चरण कमलों की स्थापना करके भगवान विष्णु ने मायावाद और ये बौद्धवाद का खंडन किया। तो अभी चैतन्य महाप्रभु वहां क्यों गए? क्योंकि सबसे पहले तो वो ऐसे मायावादियों, कर्मकांडियों, बौद्ध लोगों को फिर से बतलाना चाहते थे कि देखो ये विष्णु का स्थान है, तुम लोग न कर्मकांड को मान रहे हो न भक्ति मार्ग को मान रहे हो, लेकिन यहां ये गया में विष्णु के पद चिन्ह यहां है, विष्णु एक व्यक्ति है, इसलिए तुम्हें भक्ति करना चाहिए, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, भक्ति ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है, कर्मकांड ये सच्चा आध्यात्मिक जीवन नहीं है, और मायावाद ये तो बिल्कुल पतन, हमें पतित कराने वाला एक मार्ग है। तो इस प्रकार से ये पहला कारण था। दूसरा कारण, निमाय पंडित नास्तिक लोगों को भ्रमित कराना चाहते थे, क्योंकि ये भी भगवान के अवतार के गुण होते हैं। भगवान गीता में बताते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीन्तरिमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। वो कहते हैं कि जब भी मैं ये संसार में प्रकट होता हूं तो जो मूढ़ लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, वो मुझे पहचानते नहीं है, अवजानन्ति माम, मुझे नहीं जानते। कौन नहीं जानते? मूढ़, मूर्ख व्यक्ति। मानुषीम तनुमाश्रितम, वो सोचते हैं कि मैंने मनुष्य रूप धारण किया है, मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं। परम भावम अजानन्तो, मेरे परम भाव को वो नहीं जानते हैं, और ये भी नहीं जानते हैं मम भूत महेश्वरम, कि मैं सारे प्राणियों का स्वामी हूं, अधिष्ठाता देव हूं मैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब ये संसार में प्रकट होते हैं, जो अश्रद्धालु लोग हैं वो भगवान को देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, पश्यन नपि न पश्यति, देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ये भगवान है। जैसे दुर्योधन ने, शकुनी ने, दुशासन ने कृष्ण भगवान को देखा लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये भगवान है, और जब उनको बतलाया गया कि ये भगवान है, फिर भी दुर्योधन ने क्या जवाब दिया? अगर ये भगवान भी होगा लेकिन फिर भी मेरा दुश्मन है, अगर ये सारे सृष्टि का संहार भी करेगा लेकिन मैं इसको और अर्जुन को इसके खिलाफ युद्ध करके ही रहूंगा, तो ये है असुरी प्रवृत्ति। तो चैतन्य महाप्रभु भी जानते थे कि लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है और अपने लीला को उन्होंने ढक लिया। और ढकने का जो आवरण है वो क्या है? वो श्रद्धा है। केवल श्रद्धालु लोग भगवान को समझ सकते हैं, मतलब भगवान अपने भक्ति मार्ग को, अपने दिव्य स्वरूप को ऐसे लीला करके ढक देते हैं कि केवल श्रद्धालु लोग इस लीला के पर्दे को हटाकर वो वास्तव में सत्य क्या है उसको देख सकते हैं। और इस पर्दे को हटाने का जो तरीका है, ये जो यंत्र है, वो क्या है? वो है श्रद्धा। और अश्रद्धालु लोग तो साधारण व्यक्ति ही समझेंगे भगवान को। तो इसी तरह से निमाय पंडित ने सोचा, एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति जैसे जाकर श्राद्ध करता है गया में, मैं भी एक साधारण व्यक्ति की तरह वहां जाऊंगा और लोग जो अश्रद्धालु हैं मुझे पहचान नहीं पाएंगे और माया में पड़े रहेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं ये दूसरा कारण है कि निमाय पंडित गया गए। तीसरा कारण ये है कि निमाय पंडित ने सोचा कि मैं तो कृष्ण हूं और कृष्ण भक्ति लोगों को देने के लिए मैं यहां आया हूं, अवतार लेने का कारण ये है मेरा, और जगह जगह मुझे कृष्ण भक्ति बांटना है मुफ्त में, पात्रता अपात्रता न देखते हुए। और अभी समय आ गया है, मैं भगवान होते हुए मुझे भगवान के भक्त का रूप धारण करना है और ऐसे रूप में मैं सारे भक्तों का आश्रय बन जाऊंगा। लेकिन उसके पहले मुझे भक्त तो बनना चाहिए। अब तो मैं केवल एक ज्ञानी, एक तर्क करने वाले व्यक्ति की लीला मैंने प्रकट की है, तो मुझे भक्त बनने के लिए मुझे एक गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। और मैं दीक्षा लूंगा ईश्वरपुरी महाराज से, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, और वो मुझे गया में मिलेंगे। तो वहां जाकर मैं दीक्षा लूंगा और फिर मैं लौट कर आऊंगा एक भक्त के रूप में। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित की जो गया यात्रा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान ही निमाय पंडित में भीषण परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन कैसा था? जमीन आसमान का अंतर। कहां वो निमाय पंडित जो नवद्वीप में पहले रहा करते थे केवल शुष्क ज्ञानी थे, तर्क वितर्क करते थे, व्याकरण के अध्यापक थे, और कहां वो निमाय पंडित जो जब गाया से लौट के आए तो अष्ट सात्विक विकार भक्ति भाव में कृष्ण कृष्ण करते हुए लौट कर आ गए। हमेशा हमेशा कृष्ण के विरह में शोक करते थे, दिन भर कृष्ण का नाम का उच्चारण करते थे। कितना अंतर हो गया, लोग उनको पहचान भी नहीं पाए कि क्या ये वही निमाय पंडित है। तो ये गाया जाने का महत्व था। तो खैर, निमाय पंडित गाया की ओर निकले अपने शिष्यों के संग, और जाते जाते निमाय पंडित अलग अलग आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा करते गए उनके संग में। और पहुंचते पहुंचते जाते जाते एक स्थान में पहुंचे जिसका नाम है मंदार पर्वत। मंदार पर्वत ये आज के भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार प्रांत में शायद पड़ेगा, भागलपुर शहर के पास में। और वहां पे भी उस भूमि को उन्होंने पावन बना दिया। हाँ, निमाय पंडित के गया जाने का और एक कारण भी है, चौथा कारण समझ लीजिए, कि वो अपने चरण कमलों से इन सारे प्रांतों को सुशोभित करना चाहते थे और उन सबको पावन भूमि बनाना चाहते थे। यहां तक कि गया धाम को भी वो पावन करना चाहते थे, क्योंकि हालांकि वो धाम है, विष्णु का स्थान है, लेकिन फिर भी इतने सारे बौद्ध लोग, मायावादी लोग, कर्मकांडी लोगों की वजह से अब ये काफी प्रदूषित हो गया था। तो निमाय पंडित न केवल गया बल्कि और जो भी बीच में पड़ने वाले प्रांतों को वो पावन कराना चाहते थे। तो पहुंचते पहुंचते जब मंदार पर्वत के पास में आए, जो कि भागलपुर शहर के पास में है, तो वहां पे वो ऊपर चढ़े इस मंदार पर्वत के, जहां पर दो मंदिर थे। और इसके बड़े मंदिर में उस समय भगवान मधुसूदन का सुंदर विग्रह था। मधुसूदन भी भगवान कृष्ण का रूप है। मधु नाम के राक्षस का वध करने वाले, इसलिए उनका नाम हुआ मधुसूदन। जैसे भगवान कृष्ण का और एक नाम है कंस निषूदन, कंस का वध करने वाले, तो उसी तरह से मधुसूदन। तो उस समय निमाय पंडित ने अपने शिष्यों के साथ जाकर मधुसूदन भगवान का दर्शन किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि आज वो मूर्ति वहां पर नहीं है, वंशी नाम के एक जगह में वो विग्रह है अभी रखी हुई है और वहां लोग उनको पूजते हैं, क्योंकि वहां पर काला पहाड़ नाम का एक डकैत रहता था, तो उसके डर से मधुसूदन की मूर्ति दूसरी जगह ले जाई गई। जैसे कि वृंदावन के कई सारे जो कृष्ण भगवान की मूर्तियां थीं, जिनकी स्थापना कृष्ण भगवान के प्रपौत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ ने की थी, तो कई ब्राह्मणों ने और भक्तों ने वहां की मूर्तियां वो राजस्थान ले गए थे, क्योंकि मुगल जो राजा थे वो वृंदावन में आक्रमण कर रहे थे। तो ठीक उसी तरह मधुसूदन के विग्रह को बचाने के लिए काला पहाड़ नाम के इस डकैत से के दूर ले जाने के लिए वंशी नाम के स्थान में ले गए। अभी ये दो मंदिर हैं वो जैन लोगों के कब्जे में हैं और वहां पर मधुसूदन अभी नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर्वत के तट पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य मठ की स्थापना की, वहां चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों की स्थापना की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे कई स्थानों में किया, जिस मार्ग से निमाय पंडित नवद्वीप से होकर गया जा रहे थे और सारे प्रांतों को पावन करते जा रहे थे, अलग अलग जगह में जहां वो दर्शन के लिए गए या उन्होंने जहां वो रुके थे, अलग अलग स्थानों में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने मठ के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों की स्थापना की है। ये बहुत बड़ी सेवा हुई, क्योंकि जो भी स्थान में जिस स्थान से भी भगवान गुजरते हैं वो कोई साधारण स्थान नहीं है, वो भी एक धाम हो जाता है। तो खैर मंदर पर्वत से फिर आगे चलते चलते गया के पास निमाय पंडित आए। वहां पे एक रेलवे स्टेशन है जो आज के जमाने में पुनपुन कहा जाता है, और वहां से एक नदी बहती है पुनपुना नदी, यह भी एक पावन स्थान है। तो निमाय पंडित ने वहां स्नान किया और फिर श्राद्ध अर्पण किए, पिंड तर्पण इत्यादि वहां पर अर्पण किए अपने पितरों के प्रति, और फिर गया में प्रवेश किया उन्होंने। क्योंकि यह बताया जाता है कि धाम में प्रवेश करने के पहले हमें पवित्र स्थान में स्नान करना चाहिए फिर जाना चाहिए। तो निमाय पंडित वैसे काफी हद तक इन सारे विधि विधानों का पालन किया करते थे। एक बार जब गया में प्रवेश करने के पहले निमाय पंडित ने और एक लीला प्रकट की, एक साधारण व्यक्ति के समान अचानक उनकी स्वेच्छा से उनको बुखार आ गया, जैसे एक साधारण व्यक्ति को आता है जिसका शरीर तीन गुणों से बना हुआ है। निमाय पंडित का शरीर तो सच्चिदानंद शरीर था, तो भले ऐसे सच्चिदानंद शरीर में रोग बीमारी ये कैसे आ सकता है, बुखार उनको कैसे हो सकता है, लेकिन ये भी भगवान की एक लीला। जैसे कृष्ण भगवान भी कभी कभी ऐसी लीला करते थे कि मानो उनको सरदर्द हो रहा है। एक बार कृष्ण भगवान ने ये लीला की, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सरदर्द हो रहा है, तो उनके सभी लोग भक्त लोग आए, अरे कृष्ण को सरदर्द हो रहा है तो क्या दवाई है। सारे वहां के वैद्य आए, सभी आए, लेकिन कोई दवाई नहीं चलती थी, कृष्ण भगवान का सरदर्द तो चलते रहा। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि इस सरदर्द को दूर करने के लिए एक ही तरीका है और वह है मेरे भक्तों के चरण धूलि। तो सबसे पूछा गया, देखो कृष्ण को सरदर्द है, तुम्हारी चरण धूलि देने के लिए तैयार हो, वो अपने सर पे लगाएंगे सरदर्द दूर हो जाएगा। सभी लोग ने अपने कान पकड़ लिया, अरे अरे मेरे चरण की धूलि कृष्ण के सर के ऊपर, ये कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ये तो पाप होगा, मैं तो नरक में जाऊंगा। लेकिन जब गोपियों के पास पूछने गए तो गोपियों ने कहा अरे कृष्ण को सरदर्द है और हमारे चरण धूलि से कृष्ण का सरदर्द दूर हो जाएगा, ले लो कि जितना चाहिए उतना चरण धूलि ले लो और हमें नरक में जाना पड़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण का सरदर्द तो कम से कम नष्ट हो जाएगा, कृष्ण को सुख मिलेगा। तो इस लीला से कृष्ण भगवान ने सिद्ध कर दिखाया कि गोपियों का स्थान कितना महान है। गोपियों के हृदय में जो भक्ति भावना थी भगवान कृष्ण के प्रति, इतनी तीव्र और इतनी शुद्ध थी कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे भगवान के लिए, खुद भी नरक में हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार थे। लेकिन जो दूसरे भक्त थे वो सोच रहे थे, अरे नहीं नहीं नहीं, हमसे पाप होगा, हम नरक में जाएंगे। तो ये भी एक लीला थी भगवान कृष्ण की कि उनको सरदर्द हो रहा है। भला कृष्ण भगवान को कहां से सरदर्द हो सकता है? बल्कि वही हिरण्यकश्यप रावण जैसे व्यक्तियों के लिए सरदर्द बन जाते हैं और फिर उनके ही सर को काट देते हैं। तो खैर, निमाय पंडित ने भी एक लीला की जैसे कि मानो उनको बुखार हो गया है। ये लीला क्यों की चैतन्य महाप्रभु ने? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि वृंदावन में कई ऐसे लोग हैं जिनको प्राकृत सहजीय कहते हैं, मतलब जो भक्ति मार्ग को बहुत सहज समझते हैं। विधि विधानों का पालन करने की इच्छा उनको नहीं है, लेकिन कच्चे अवस्था में भी अपने आप को बहुत ऊंचे भक्त समझते हैं और ऐसे पेश आते हैं समाज में, और फिर रासलीला करते हैं और नाना प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जो वास्तव में पाप हैं, भक्ति के नाम में ऐसे करते हैं और अपने आप को बहुत उन्नत भक्त समझते हैं और सोचते हैं कि हमारा भी दिव्य शरीर आ गया है भक्ति करने से। तो चैतन्य महाप्रभु ये सिखाना चाहते थे कि देखो, मेरा भी खुद शरीर एक साधारण शरीर नहीं है, मैं तो दिव्य शरीर, मेरा शरीर तो दिव्य है, लेकिन ये लीला मैं कर रहा हूं ताकि लोग समझ जाएं कि जब मैं जो भगवान हूं ऐसे अपने आप को पेश कर रहा हूं कि ये एक साधारण शरीर है, तो आपको मतलब प्राकृति सहजी लोगों को कितना और सावधान रहना चाहिए कि आप अपने शरीर को सच्चिदानंद शरीर नहीं समझें। आपका शरीर तो केवल पंच महाभूतों का बना हुआ, तीन गुणों का बना हुआ एक शरीर है। और जैसे कृष्ण भगवान ने भक्तों की चरण धूलि मांगी थी अपने सर पर डालने के लिए, तो उसी प्रकार से निमाय पंडित ने कहा, जब कोई दवाइयां काम नहीं कर रही थी, उनके विद्यार्थी इधर उधर जा रहे थे, तो निमाय ने कहा एक ही तरीका है, औषध एक ही है, और वो है शुद्ध ब्राह्मणों के चरण को धोए हुए पानी से मुझे पीने दो। शुद्ध ब्राह्मणों का चरण जल जो है उसका पान जब मैं करूंगा तब मेरा बुखार जो है वो चले जाएगा। तो इससे निमाय पंडित और एक सबक सिखाना चाहते थे कि वास्तव में देखो, सच्चा ब्राह्मण कौन होता है? सच्चा ब्राह्मण वो होता है जो विष्णु का विज्ञान जानता है, जो विष्णु भक्त होता है, वही सच्चा ब्राह्मण है, न कि केवल जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी तथाकथित नीच परिवार में भी हुआ हो, लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो उसे ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में देह का भेद बिल्कुल नहीं है, जाति भेद नहीं, देश भेद नहीं, धर्म भेद नहीं, पुरुष स्त्री का भेद नहीं, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है और सबसे ऊंचे स्तर की प्राप्ति कर सकता है। तो इस बात को समझाने के लिए निमाय पंडित ने ब्राह्मणों के, शुद्ध ब्राह्मणों के चरण जल का पान करने का निश्चय किया। और वैसे निमाय पंडित का दूसरा भी उद्देश्य था ये कार्य करने के लिए, और वो ये था कि वो बताना चाहते थे कि ठीक है, मैं श्राद्ध वगैरह करने जा रहा हूं जो कि कर्मकांड में आता है, लेकिन इससे ये लोग ना समझें कि मैं कर्मकांड को ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन समझ रहा हूं। नहीं, सच्चा आध्यात्मिक जीवन तो भक्ति है, और भक्तों का शरण लेना ये सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ऐसे जो विष्णु भक्त ब्राह्मण जो हैं, इनके चरण का जल अगर मैं पान करूंगा तो फिर ये मेरे सबसे सर्वश्रेष्ठ काम होगा। तो इस प्रकार से निमाय पंडित ने इन ब्राह्मणों के चरणों का जल जो है वो धोया हुआ जो जल है उससे पान किया, और तुरंत उनका जो बुखार है वो निकल गया। ये भी निमाय पंडित भगवान की एक लीला है। तो खैर, फिर वो गया में आए, जब उन्होंने प्रवेश किया तो सबसे पहले वो गए इस स्थान पर चक्रवेड, जहां पर गदाधर विष्णु या वामन देव के चरण चिन्ह जहां पर स्थापित हैं, और आज भी जो भी लोग श्राद्ध करने जाते हैं अवश्य भगवान विष्णु के चरण कमल का दर्शन तो करते ही है, नहीं तो गया की यात्रा पूरी नहीं होती है और श्राद्ध भी निष्फल रहता है। तो वहां पर जाकर उन्होंने भगवान विष्णु के चरण कमलों का दर्शन किया और उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के चरण कमलों के ऊपर ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल वगैरह अर्पण किए हुए थे, चंदन से सुशोभित था, अगरबत्ती कपड़े इत्यादि लोगों ने भेंट दिए थे, बहुत सुंदर दृश्य था। और भगवान के चरण कमलों को घेर के बहुत सारे ब्राह्मण बैठे थे जो ऐसे लग रहा था कि ये बहुत दिव्य लोग हैं, और वो भगवान विष्णु के चरण कमलों का वर्णन कर रहे थे। जो भी लोग वहां आए थे तीर्थयात्री वगैरह, उनको बतला रहे थे कि यहां पर भगवान विष्णु के चरण कमलों की महिमा क्या है। जैसे जब भी आप कोई भी तीर्थ स्थान में जाते हैं या कोई मंदिर में जाते हैं तो वहां पर वहां के जो पंडा हैं या ब्राह्मण हैं वहां पर बैठे हुए होते हैं, आपका अनुभव होगा सब जगह, वृंदावन में हो या कहीं भी हो, फिर वो उस स्थल की महिमा समझाते हैं कि देखो बैठो यहां इसका इतिहास ऐसे है, भगवान ने ऐसे किया वैसे किया, ये लीला की। तो उसी प्रकार से यहां पर ये ब्राह्मण इस स्थान का इतिहास समझा रहे थे, लीला का महात्म्य बता रहे थे, और फिर कहने लगे कि देखो देखो हे भाग्यवंत जन, ये भगवान विष्णु के चरण कमल हैं, वही चरण कमल जो कि शिव जी अपने हृदय में धारण करते हैं, वही चरण कमल जो लक्ष्मी देवी स्वयं जिनकी सेवा करती हैं श्वेत द्वीप में, वही चरण कमल जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी बहुत लंबे समय से तपस्या करते हैं, और वही चरण कमल अभी आप हे भाग्यवंत जन आपके आंखों के सामने देख रहे हैं। यही वो विष्णु के चरण कमल हैं जिनसे कि गंगा जी बहती है, यही वो चरण कमल हैं जबकि जब भगवान विष्णु अनंत शेष पर लेटते हैं जो जितने सुंदर लगते हैं। इस प्रकार से यहां के जो ब्राह्मण थे वो भगवान विष्णु के चरण कमलों का वर्णन करते रहे, कहते रहे कि यही जो चरण कमल हैं जो भगवान के भक्त प्राप्त करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। वास्तव में भगवान के चरण कमल ही भक्तों के आश्रय होते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य होते हैं। भगवान के चरण कमलों के अलावा भक्तों को और कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो खैर, जब निमाय पंडित ने भगवान विष्णु के चरण कमलों का दर्शन किया और ब्राह्मणों से ये सुंदर वर्णन किया सुना तो तुरंत उनके आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, शरीर में कंपन होने लगा, कंठ गदगद हो गया, रोमांच खड़े हो गए। दूसरे शब्दों में निमाय पंडित के दिव्य शरीर में अष्ट सात्विक विकार भक्ति के शुद्ध प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अवतार में ये पहली बार उनके प्रकट लीला में उन्होंने ऐसे भक्ति के लक्षण प्रकट किए, आज तक इस लीला में उन्होंने नहीं किए थे। केवल एक तर्क करने वाले व्याकरण के शिक्षक के रूप में उन्होंने लीला की थी, कृष्ण भक्त कभी बने नहीं थे। इस दिन पहली बार चक्रवेड में जाकर गदाधर विष्णु वामन देव के चरण कमलों का दर्शन करते हुए उन्होंने भक्ति के लक्षण पहली बार प्रकट किए। ब्राह्मणों ने निमाय पंडित को देखा, आश्चर्यचकित हो गए कि निमाय पंडित के आंखों से गंगा के समान जल बह रहा है और कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, और देवी योग से ठीक उसी समय उसी क्षण ईश्वरपुरी वहां पर प्रकट हुए। अब पिछले साल की कथा आपको याद है या नहीं है नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम होगा कि करीब 5 साल पहले इस घटना के 5 साल पहले जब निमाय पंडित अपने केशोर अवस्था में जा ही रहे थे तो ईश्वरपुरी पहली बार नवद्वीप में आए थे, और संक्षेप में उस घटना के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो पहली बार था जबकि निमाई पंडित की मुलाकात ईश्वरपुरी से हुई थी। अब यहां गया में जो मुलाकात हुई वो दूसरी बार थी। तो पहले बार जब ईश्वरपुरी नवद्वीप में आए थे 4-5 साल पहले, तो भ्रमण करते करते आ रहे थे, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण भक्ति इतना तीव्र था, इसलिए उनके हृदय को ये भक्ति चंचल बना रही थी। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्त एक स्थान में रह नहीं सकते, और उनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उनको अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाने के लिए प्रेरित करता है। तो अपने भ्रमण के दौरान ईश्वरपुरी नवद्वीप में आए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यह भी विद्वानों का स्थान है, पवित्र स्थान है। और जब वो वहां पर आए, एक साधारण एक डंडी या मायावाद सन्यासी की तरह आए, किसी को बताया नहीं कि वो एक भक्त हैं। भक्त हमेशा नम्र रहता है, कभी इस बात की घोषणा करना नहीं चाहता कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं, देखो मैं वैष्णव सन्यासी हूं, नहीं। तो वो आए और कई दिन तक इधर उधर रहे, और फिर उन्होंने सुना था कि अद्वैत आचार्य वहां पर हैं और उनके घर में बहुत सारे वैष्णव एकत्र होते हैं। तो उस समय अद्वैत आचार्य के घर में वो गए, अद्वैत आचार्य के संग में थोड़े भक्त बैठे थे और स्वयं अद्वैत आचार्य किसी काम में व्यस्त थे। ईश्वरपुरी हालांकि इतने बड़े महाभागवत शुद्ध भक्त वैष्णव सन्यासी थे, फिर भी बहुत नम्रता से केवल अद्वैत आचार्य के थोड़े सामने जाकर चुपचाप बैठ गए। उन्होंने बताया तक कि नहीं कि मैं आया हूं, हालांकि ये सन्यासी थे और अद्वैत आचार्य गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी इतने नम्र थे कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा उन्होंने, बस तुरंत जाके चुपचाप बैठ गए वहां पर। अद्वैत आचार्य ने देखा कि अरे ये कौन आया हमारे सामने, और तुरंत देखा उनके शरीर का जो तेज है, उनके शरीर के जो लक्षण है, उनको देखकर अद्वैत आचार्य और अन्य भक्त समझ गए कि ये तो कोई विशेष वैष्णव है और बहुत ही महाभागवत वैष्णव होगा, क्योंकि एक महाभागवत वैष्णव ही दूसरे महाभागवत वैष्णव को पहचान सकता है, नहीं तो महान भक्त को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर, अद्वैत आचार्य ने कहा कि हे साधु पुरुष, आप कौन है? मुझे लगता है कि आप तो कोई महान वैष्णव सन्यासी हैं, लेकिन आपने तो एक डंडी मायावाद सन्यासी का पोशाक धारण किया हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है आपको आपके चेहरे को देखकर आप अवश्य वैष्णव हैं। तो उस समय ईश्वरपुरी ने जवाब दिया, वैष्णव तो क्या, मैं तो एक चौथे श्रेणी का 4th क्लास आदमी हूं, और मैं तो केवल आपके चरण कमलों का दर्शन करने हेतु यहां पर आया हूं बस। तो उस समय मुकुंद, जो कि और एक वैष्णव थे, महान वैष्णव, वो वहां पर पास में खड़े थे। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अपने आप को चौथे श्रेणी का आदमी बतला रहे हैं, चलो इसके गौरव को, इसके महिमा को अभी अभी प्रकट करा देते हैं। तो फिर क्या किया मुकुंद ने, एक भजन गाना शुरू किया। मुकुंद का स्वर बहुत सुरीला हुआ करता था, गंधर्व की तरह, और भक्ति भाव से वो भजन किया करते थे और श्लोकों का उच्चारण करते, और जब भी मुकुंद गाते तो सारे भक्त लोग आनंद के सागर में डूब जाते, भाव विभोर हो जाते। तो मुकुंद ने एक भजन गाना शुरू किया, जैसे ही कृष्ण का नाम निकला और भजन शुरू हुआ, तो सारे अष्ट सात्विक विकार, भक्ति के लक्षण ईश्वरपुरी में प्रकट हो गए। और अचानक जब ये लक्षण प्रकट हुए तो अद्वैत आचार्य घबरा गए, तुरंत जाकर आलिंगन कर लिया, अरे क्या हो गया, फिर समझ गए नहीं नहीं लक्षण प्रकट हो गए हैं उनके अंदर। और दोनों ने आलिंगन किया, दोनों के शरीर में ऐसे अश्रुधारा होने लगे, लेकिन यह कोई सस्ती चीज नहीं है जिसकी हम नकल कर सकेंगे। समय के पहले महाभागवत शुद्ध वैष्णव होने के पहले जो आंसू होते हैं, वो प्रभुपाद जी कहा करते थे, ऐसे आंसुओं से सारे वेदों के सिद्धांत धुला जाते हैं। मतलब ये केवल हमारी शारीरिक भावुकता की वजह से होते हैं, लेकिन ईश्वरपुरी और अद्वैत आचार्य के जो आंसू थे वो आत्मा के आंसू थे, शुद्ध भक्ति के आंसू थे। तो खैर, दोनों अद्वैत आचार्य और ईश्वरपुरी को देखकर मुकुंद और सुंदर श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उच्चारण करने लगे कृष्ण लीला में और कीर्तन करने लगे अद्वैत आचार्य और ईश्वरपुरी। बाद में जब थोड़े बहुत शांत हो गए, जब भक्तों को समझ में आया कि ईश्वरपुरी है वही महाभागवत ईश्वरपुरी जो कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे जिन्होंने माधवेंद्रपुरी के अंतिम क्षणों में सेवा की थी, उनको इतना आनंद आया कि तुरंत जोर जोर से उन्होंने कीर्तन करना आरंभ किया। तो इस प्रकार से ईश्वरपुरी वहां पर रहे नवद्वीप में बड़े खुशी से भक्तों के संग में और 7 महीने पूरे वहां पर रहे गोपीनाथ आचार्य के घर में और हर दिन वो वैष्णवों के संग में आकर कथा करते थे, कीर्तन करते थे और खास करके उन्होंने गदाधर पंडित के ऊपर कृपा की। ईश्वरपुरी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कृष्ण लीलामृत और गदाधर पंडित के संग में हमेशा इन श्लोकों को पढ़ते थे और कृष्ण भक्ति के रस का स्वाद लेते थे। और एक बार ऐसे हुआ कि नवद्वीप में चलते चलते जब ईश्वरपुरी जा रहे थे तो उन्होंने निमाई पंडित को सामने से आते हुए देखा। ये हमें याद रखना है कि अभी तक निमाई पंडित एक व्याकरण के शिक्षक के रूप में ही थे निमाई पंडित। तो उन्होंने निमाई पंडित को देखा, उनके शरीर का तेज, उनका सौंदर्य इतना अद्भुत कि ईश्वर परिपुरी के हृदय में एक स्वाभाविक आकर्षण जागृत हुआ कि ये कौन है, ये ब्राह्मण अवश्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मेरे हृदय में इतना आकर्षण क्यों हो रहा है इस व्यक्ति के प्रति। तो ईश्वरपुरी ने जाकर निमाई पंडित से पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो, तुम क्या पढ़ाते हो, तुम कहां रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे हाथ में कौन सा पुस्तक है। और जैसे ही निमाई पंडित ने ईश्वरपुरी को देखा, उन्होंने भी दंडवत किया क्योंकि ये सन्यासी के वेश में थे। तो निमाई पंडित संस्कृति जानते थे, जब गृहस्थ को सन्यासी को देखता है तो तुरंत प्रणाम करना चाहिए, तो प्रणाम किया। फिर निमाई पंडित के शिष्यों ने ईश्वरपुरी को बताया कि ये कौन है। ईश्वरपुरी बड़े खुश हुए, अरे तुम निमाई पंडित हो, अरे तुम्हें मिलकर बहुत खुशी हुई, तुम्हारे बारे में मैंने कितना कुछ सुना है कि तुम कितने बड़े विद्वान हो। और उस समय निमाई पंडित ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो वास्तव में कोई बड़ा विद्वान नहीं हूं, अभी आपका दर्शन हुआ हमें बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार से निमाई पंडित ने ईश्वरपुरी को अपने घर में प्रसाद के लिए निमंत्रण किया और निमंत्रण करके उनको अच्छी तरह से खिलाया। ईश्वरपुरी बड़े खुश हुए और हर रोज निमाई पंडित अपने पाठशाला के समाप्त होने के बाद ईश्वरपुरी का दर्शन करने के लिए जाते जब तक कि ईश्वरपुरी वहां गया नवद्वीप में थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि ईश्वरपुरी ने निमाई पंडित से कहा कि अरे निमाई पंडित, आप तो बड़े विद्वान हो, मैंने ये ग्रंथ की रचना की है कृष्ण लीलामृत, मैं तो कोई बड़ा विद्वान नहीं हूं, अवश्य इस ग्रंथ में बहुत सारे दोष होंगे, कमियां होंगे व्याकरण की दृष्टि से या और कोई दृष्टि से, तो कृपया इसको पढ़ो आप और उसमें जो कोई दोष है उसको सुधार लो। तो निमाई पंडित ने जवाब दिया कि ये जो ग्रंथ है ये शुद्ध भक्ति से उत्पन्न हुआ है, श्री कृष्ण के बारे में है, अगर कोई व्यक्ति ये सोचे भी कि इसमें कोई गलती है ये बहुत बड़ा अपराध होगा, ये साधारण किताब नहीं है, क्योंकि आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी अपने कल्पना से या अपने मनगढ़ंत ढंग से किस कोई भी बात को कहते नहीं है या बोलते नहीं है, वो जो भी लिखते हैं वो शास्त्रों के ऊपर आधारित होता है और स्वयं भगवान की प्रेरणा से हृदय से उनके आता है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि ये तो बिल्कुल प्रामाणिक है और सारे जगत का कल्याण करने वाला है। भगवान की भक्ति में ऐसे कोई गलतियां नहीं होती हैं। निमाई पंडित आगे कहने लगे कि अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति है जो संस्कृत का व्याकरण नहीं जानता है और वो भगवान विष्णु के सामने आता है और कहता है ओम श्री विष्णाय नमः, विष्णु की स्तुति करने के लिए, जबकि विष्णाय नमः नहीं कहना चाहिए, विष्णवे नमः कहना चाहिए,
जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ओम विष्णुवे नमः कहेगा। दोनों जो ज्ञानी है जो अज्ञानी है, दोनों ही भगवान विष्णु को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु दोनों में भेद नहीं करते, दोनों के भक्ति को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान बाहरी विद्वत्ता को नहीं देखते हैं, वो अंदर जो हमारे शरणागति या भक्ति की भावना है उसको ग्रहण करते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। बाहर से हम शिक्षित हों नहीं हों, हमें बहुत सारे श्लोक मालूम है नहीं है, हमें बहुत पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अमीर है गरीब है, कोई बात नहीं, भक्ति मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान को भावग्राही जनार्दन कहते हैं। वो जनार्दन, वो भगवान कृष्ण जो कि भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं। केवल बाहरी आपके शिक्षण, आपकी विद्वत्ता, आपके आर्थिक स्थिति, इसको नहीं देखते हैं भगवान। तो फिर आगे निमाय पंडित कहने लगे कि कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो साहस करेगा कि आपके ग्रंथों में ऐसे भूल निकालना, क्योंकि आपका ग्रंथ जो है वो परिपूर्ण है, और अगर कोई दोष इसमें ढूंढने जाए तो दोषों का सागर तो उसमें होगा, आपके ग्रंथ में नहीं। तो जब निमाय पंडित, जब ईश्वरपुरी ने निमाय पंडित की यह व्याख्या सुनी, इतने खुश हो गए कि उन्होंने निमाय पंडित का आलिंगन किया, और फिर वो कहने लगे कि निमाय पंडित, फिर भी तुम देखो इसमें बहुत सारे गलतियां हो सकती हैं, देखो। तो फिर निमाय पंडित ने देखा, और एक दिन कई दिन बाद वो कहने लगे कि हे ईश्वरपुरी महाराज, आपने इस स्थान पर यहां एक धातु का प्रयोग किया है जो आत्मनिपाद है, लेकिन वास्तव में मैं सोचता हूं कि परस्मय पदी होना चाहिए, यह धातु का गलत प्रयोग हुआ यहां पर। तो ईश्वरपुरी इन्होंने कहा, हाँ ठीक है मैं देखूंगा इसके बारे में सोचूंगा। ईश्वरपुरी भी तो बड़े विद्वान थे, वास्तव में भौतिक दृष्टि से भी बड़े विद्वान थे, आध्यात्मिक दृष्टि से तो थे ही बहुत महाभागवत। तो घर जाके बहुत गहराई से वो सोचने लगे, व्याकरण की दृष्टि से, अलग अलग दृष्टिकोण से, और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो उन्होंने पहले लिखा था वही सही है और निमाय पंडित जो कह रहा है वो गलत है। तो अगले दिन जब निमाय आए तो ईश्वरपुरी कहने लगे निमाय पंडित से, अरे निमाय, तुम्हारे बात के बारे में मैंने बड़े गौर से सोचा है समझा है, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो इसको आत्मनिपद ही होना चाहिए, परस्मय पद ही नहीं होना चाहिए, तुमने जो कहा गलत कहा। बड़े नम्रता से ईश्वरपुरी ने कहा। उस समय निमाय पंडित ने यह बात सुना, निमाय पंडित के हृदय में इतना आनंद आया, और निमाय पंडित सोचने लगे ये पहली बार मैं हार गया हूं, लेकिन ये हार में मुझे इतना आनंद है जो कि दिग्विजय पंडित को हराने में आनंद नहीं, क्योंकि निमाय पंडित जानते थे कि ईश्वरपुरी कृष्ण भक्त हैं, महाभागवत कृष्ण प्रेमी हैं, और निमाय पंडित तो स्वयं श्री कृष्ण हैं। तो इस भगवान कृष्ण अपने भक्तों के हाथ में पराजय होना पसंद करते हैं। इसलिए जब ईश्वरपुरी ने उनको वाद में हरा दिया या उनकी गलती को गलत उनको जब साबित कर दिया तो निमाय पंडित बहुत प्रसन्न हुए, और इस प्रकार से निमाय पंडित और थोड़े समय के लिए ईश्वरपुरी का संग करते रहे, और फिर ईश्वरपुरी वहां से निकलकर अपने तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते करते निकल पड़े। और ये 5 साल की घटना तो अवश्य निमाय पंडित को याद थी, और इस बार जब चक्रवेड में आए और विष्णु के चरण कमलों का दर्शन किया, और उनके जब अश्रु प्रवाह हो रहा था, और उस समय दोबारा उनकी मुलाकात हुई ईश्वरपुरी से, दोनों ने एक दूसरे को देखा, और उसके बाद में क्या हुआ, उनके बारे में, उनके बीच में क्या बातचीत हुई, हम इसके बारे में कल सुबह इसी समय इसी जगह पर सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।